نستعينه من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. جس جس کے دل میں زیارت سید الشہداء کی تمنا ہے میرے ساتھ مل کر سلام کے ان جملوں کو دہرائیے گا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. صدق مولانا العظيم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. عزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم. ایام اربعینیہ کی مناسبت سے یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور اس سلسلے کی یہ پانچویں کڑی. میرا موضوع گفتگو آفاق مہدویت، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ مہدویت کی بحث کے کئی آفاق ہیں، کئی مراحل ہیں، کئی منزلیں ہیں، کہ جن میں سے اس وقت ہماری گفتگو پہلے افق میں ہی جاری ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ مہدویت کا دین سے، اور دین میں بھی عقیدے سے کیا تعلق ہے، پھر عقیدے میں معرفت اللہ اور میرے مولا کی امامت کا کیا ربط ہے، ہم بیان کر چکے. ہماری گفتگو تھی مہدویت اور نبوت میں. مہدویت اور نبوت خاصہ کی طرف اشارہ ہو چکا، مہدویت کے عقیدے اور نبوت عامہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت کا کیا تعلق ہے عقیدہ مہدویت سے، اس مرحلے پر گفتگو تھی. پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ نبوت عامہ یعنی انبیاء کی نبوت، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوت، ان انبیاء کی نبوتوں کو مہدویت کے عقیدے سے تین طریقوں سے جوڑا جا سکتا ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں، بحث کا نقشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا تو لطف آتا رہے گا انشاءاللہ. پہلا مرحلہ تھا مہدویت اور سنن انبیاء کی بحث، وہ سنتیں کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء میں جاری فرمائیں وہ سب کی سب اللہ نے قائم آل محمد میں رکھی ہیں. اب اگر امام زمانہ کو پہچاننا ہے، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ دیکھیں کہ وہ سنت الہیہ کیا تھی کہ جو انبیاء میں جاری ہوئی. تب جا کر ہمیں احساس ہوگا، تب جا کر ہم پر یہ آشکار ہوگا کہ ہمارے مولا کی سیرت، ان کا طریقہ کار کیا رہے گا. یہ پہلی بحث تھی. دوسری بحث میں نے عرض کیا تھا مہدویت اور میراث انبیاء کی بحث، اور تیسری بحث مہدویت اور خصائص انبیاء کی بحث، اوصاف انبیاء کی بحث. خدا نے زندگی دی تو انشاءاللہ ان دونوں بحثوں پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، ہم نے انبیاء کی سنتوں اور خدا کی سنتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہے، قرآن اور تاریخ کی روشنی میں کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. اور جہاں سے کل بات کو چھوڑا تھا وہیں سے اپنی گفتگو کو جوڑ رہا ہوں. کل حقیر نے سدیر سیرفی کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، سب سے آخر میں جب ہم نے سنت انبیاء پر تمہید سازی اور مقدمہ سازی کر لی، تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک روز سدیر سیرفی سے میرے چھٹے امام سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے چھٹے امام سدیر سے مخاطب ہوئے سنن انبیاء اور مہدویت، اور فرمایا کہ اے سدیر ان للقائم غیبۃ یطول امدہا، ہمارے قائم کے لیے ایک ایسی غیبت ہے کہ جس کی مدت بہت طویل ہوگی. پھر سدیر نے سوال کیا تھا ولم ذلک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کے قائم کی غیبت طویل کیوں ہوگی مہدویت اور سنن انبیاء. چھٹے امام فرماتے ہیں یا سدیر ان اللہ عز وجل ابا الا ان یجری فیہ سنن الانبیاء فی غیباتہم، اے سدیر اللہ عز وجل کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے قائم میں تمام انبیاء کی غیبتوں کی سنتوں کو جاری کر دے گا. اللہ اکبر، یعنی کیا مطلب؟ یعنی 124,000 انبیاء کی جو غیبتیں ہوئیں اور ان غیبتوں میں جو سنت پروردگار تھی وہ سب کے سب میرے آخری آقا میں جمع ہو جائیں گی. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اب خدا کا یہ فیصلہ ہے، امام کا ظہور نہیں ہوگا کب تک، حتی لا یستوفی مدد غیباتہم، کہ جب تک جتنے انبیاء کی غیبتیں ہیں 124,000 نبی ہیں، ان کی غیبتوں کی جو مدتیں ہیں، جو اوقات ہیں، جو زمانہ ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، جب تک وہ سارا کا سارا نہ گزر جائے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کل یہاں تک گفتگو کو روکا تھا، آج یہیں سے جوڑ رہا ہوں. ایک سوال پر آ کر ہماری بات کا اختتام ہوا تھا. اصلاً اس سوال پر آنے سے پہلے اس حدیث شریف کو تمام کر دوں. امام نے اپنی بات کو تنہا نہیں چھوڑا، قرآن ناطق نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر قرآن صامت کی ایک آیت کو پیش کیا. اب یہاں سے گفتگو ذرا سی ثقیل ہوتی جا رہی ہے، توجہات میرے ساتھ رکھیے گا. لیکن میں کیا کروں کہ اگر اس ممبر حسینی سے یہ مشکل معارف بیان نہیں ہوں گے تو پھر کب ہوں گے؟ اگر ہم ان ایام میں اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کب جا کر پہچانیں گے؟ لہذا یہ ابحاث، इन्हें समझना, इन्हें सीखना, इनका मुतालिया करना, इन्हें हजम करना, इन पर एतकाद रखना, ये गैबत में मौजूद हर हर मोमिन की जिम्मेदारी है। खुदा ना करे कहीं ऐसा ना हो जाए हम इस आलम में मर जाएं कि जमाने के इमाम को ना पहचाने, उनकी मारिफत ना हो। खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि मौत जाहिलियत की हो जाए। ये बहुत इंतहाई अहम है, इंसान की दुनिया और आखिरत की निजात इन मौजूआत पर और इस बहस को समझने पर टिकी हुई है। अगर तवज्जोहात मेरे साथ हैं, मैं रिवायत को मुकम्मल करता हूं। छठे इमाम ने जब यहां तक आकर गुफ्तगू को रोका कि हमारे कायम में तमाम अंबिया 1,24,000 नबी, अभी इस रिवायत से क्या क्या नताइज हमारे सामने आते हैं। अभी तो मैंने आपके सामने रिवायत पेश की है, अभी नताइज क्या आते हैं वो अगला मरहला है, पहले रिवायत मुकम्मल करने दीजिए। हुआ क्या, हमारे कायम में तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतों को, टाइम पीरियड्स को जमा कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। अब इमाम कुरान की एक आयत की तरफ इशारा फरमाते हैं। आयत क्या है, खुदा इरशाद फरमाता है, लतरकबुन्ना तबकन अम तबक, कि तुम जीना बजीना मरहला दर मरहला पिछली उम्मतों की सुन्नत पर, उनकी सीरत पर चलते रहोगे। इमाम फरमाते हैं, ऐ सुननन अला सुनन मन कान कबलकुम, यानी तुमसे पहले आदम से लेकर ईसा तक जितनी कौमें गुजर गई, जितनी उम्मतें गुजर गई, उन तमाम उम्मतों की सुन्नतों को और उन तमाम उम्मतों के बारे में जो इलाही तरीक़ेकार था उसे रसूल की उम्मत में जमा कर दिया गया है। वो हदीस तो आपने सुन रखी है ना कि रसूल अपनी उम्मत को मुखातिब करके फरमा गए थे कि तुम बनी इसराइल की नक्शे कदम पर कैसे चलोगे, नक्शे कदम पर हूबहू ऐसे चलोगे जहां वो जूता उठाकर रखते थे वहां तुम अपना जूता और अपना कदम रखोगे। यहां तक कि हदीस की ताबीर इतनी अजीब और अजीम है, हत्ता इजा दखलू फी जोहर दब्बिन ला दखलतुमू, कि अगर बनी इसराइल किसी सांप के बिल में भी दाखिल हुए होंगे तो ये उम्मत भी उस बिल में दाखिल होगी। मुराद क्या है, मुराद ये है कि जितनी आजमाइशें, जितने इब्तिलात, जितने फितन पिछली उम्मतों पर आए थे वो इस उम्मत पर भी आएंगे, और जितनी बुराइयां या अच्छाइयां पिछली उम्मतों ने की अपने अंबिया और अपनी हुज्जतों के साथ वो सब की सब तुम अंजाम दोगे। मैं इंशाल्लाह इस मफहूम को और वाजे करने की कोशिश करूंगा, इस मतलब को और बयान करने की कोशिश करूंगा जब मुख्तलिफ अंबिया की गैबतों का तज़किरा आएगा। अब यहां रिवायत मुकम्मल हो गई, कुरान की आयत इमाम ने पेश कर दी, अब यहां से अगला मरहला आता है कि इस रिवायत से हमें क्या क्या समझ आता है। जब ये नताएज वादे हो जाएंगे तो वो जो सवाल कल छोड़ा था कि अगर इमाम तमाम अंबिया की गैबतों को गुजार कर ही आएंगे, उनके जितनी मुद्दतें गुजार कर ही आएंगे, तो फिर ताजील फरज की दुआ का क्या फलसफा है, हमें क्यों अम्र किया गया कि हम अपने इमाम के जहूर की ताजील के लिए दुआ करें। यह सवाल यकीनन सामईन के अधान में होगा। इसके जवाब की तरफ और रिवायत के नताइज की तरफ आता हूं। तवज्जुहात मेरे साथ हैं तो कायम आले मोहम्मद की आदमत पर एक दुरूद पढ़ दीजिए। जान मोहतरम, बात वाजे हो रही है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। अगर नहीं पहुंचाए अपने वक्त के इमाम की मारिफत में ये मतालिब अपने सामईन हाजरीन तक, इस कौम तक, इमाम की उम्मत पर, इमाम के चाहने वालों तक, तो सवाल किया जाएगा। हजान मोहतरम, ये जो रिवायत हमने पेश की, इमाम सादिक ने क्या बताया कि कायम की गैबत तवील होने वाली है। इन्न लिल कायम गैबतुन यपूल अमदुहा, कितनी तवील हो सकती है नहीं मालूम, इमाम खामोश हैं, या खुदा जाने या हुज्जत खुदा जाने। फिर अगला जुमला क्या इरशाद फरमाया, क्यों गैबत तवील है, क्योंकि अल्लाह का ये फैसला है कि उसने अंबियाए मा सबक में उनकी गैबतों में जितनी सुन्नतों को जारी किया है, उनकी गैबत की जितनी मुद्दतें हैं, वो सब की सब हमारे कायम इमाम में जमा हो जाएगी। यहां मेरा आपसे सवाल है, अंबिया कितने हैं, कोई बच्चा भी जवाब दे सकता है, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है। तवज्जोहात मेरे साथ हैं, अंबिया कितने हैं, 1,24,000, उनमें से हम कितनों को जानते हैं, जितने कुरान या हदीस में हम तक पहुंचे फकत उन्हीं को जानते हैं, सबको तो नहीं जानते। इन 1,24,000 अंबिया में से कितने अंबिया गैबत में रहे क्या हम जानते हैं? नहीं, हमें इसका भी इल्म नहीं है। जितना मोहम्मद व आले मोहम्मद ने बताया उतना हमें पता चल गया। 1,24,000 अंबिया में से कितने अंबिया गैबत में रहे हमें इल्म नहीं है। फिर जो गैबत में रहे उनकी गैबत की मुद्दत कितनी थी, टाइम पीरियड कितना था, कितने कितने जमाने तक हर हर नबी गैबत में रहा, क्या हम ये बात जानते हैं या क्या इमाम ने बताया? नहीं, ये भी नहीं बताया। नतीजा क्या हुआ? हमें अव्वलन ये भी नहीं मालूम कि कितने अंबिया गैबत में गए। चंद अंबिया के बारे में हमें मालूम है क्योंकि वो खुद आइम्मा ने अपनी रिवायात में बताया, और वही किताब के जिसका कल तذکرہ हुआ था कि जो शेख सदूक ने इमाम जमाना के अम्र पर तालीफ की थी, उसमें बहुत सी ऐसी रिवायात को शेख सदूक अलैहि रहमान ने जमा किया कि जिनमें अंबिया की गैबतों का तذکرہ है। लेकिन उनके अलावा कितने नबी गैबत में रहे हमें नहीं मालूम। और ये जो अंबिया गैबत में रहे, जितने भी अंबिया, इमाम ने क्या कहा था, कायम में तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतों को जमा किया जाएगा। कितने अंबिया गैबत में रहे नहीं मालूम। अंबिया की गैबत की मुद्दतें कितनी थी हमें यह भी नहीं मालूम। नतीजा क्या हुआ? हमारे वक्त के इमाम की गैबत की मुद्दत कितनी होगी ये भी हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि इमाम ने कहा था हमारे कायम तमाम अंबिया की गैबत की मुद्दतों को जमा करेंगे। तो जब तक हमें अंबिया की गैबतों का इल्म नहीं है तो तब तक कायम की गैबत का इल्म भी हासिल नहीं हो सकता है। और ये बड़े अहम नताइज हैं इस रिवायत से। इसी वजह से इमाम मासूम ने फरमाया था कदेबल वक्तातून, जो शख्स टाइम मुअय्यन कर रहा हो, वक्त दे रहा हो, अभी करीब आ गया, कल हो जाएगा, इस बरस हो जाएगा, फला जंग हो रही है इसके बाद हो जाएगा, इमाम ने फरमा दिया कदेबल वक्तातून, जो कोई भी जहूर की तौकीद करे, जहूर के लिए वक्त को बयान करे, वो सब का सब झूठा है, उसे झुटला दो। बात वाजे हो रही है। क्यों? क्योंकि कायम में तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें हैं। ना हमें यह मालूम है कि अंबिया कितने गैबत में रहे, और ना हमें यह मालूम है कि जो गैबत में थे उनकी गैबत की मुद्दतें कितनी थी। अगर यहां तक बात वाजे हो गई, मेरे साथ आ गए, तो मिलकर एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाने मोहतरम, मुझे मौजू की सऊबत का अंदाजा है, मुझे एहसास है, लेकिन आपकी तवज्जोहात अपने साथ चाहता हूं। ये अहम मआरिफ है, ये अहम मराहिल है। अब यहां वो बुनियादी सवाल उठता है कि जो इस मजमे में मौजूद हर हर बच्चे के जहन में भी पैदा हो चुका होगा कि अगर गैबत तवील है और तमाम अंबिया की गैबत की मुद्दतें गुजार कर ही मेरे मौला को जहूर फरमाना है, तो फिर फलसफे दुआए ताजील फर्ज क्या है? हम क्यों दुआ मांगते हैं? हमें इमाम ने हुक्म दिया असलन ताजील फरज की दुआ करना भी इबादत है। फकत इतना कहना अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीये कल फरज, ये भी इबादत है। और आम रिवायात में तो इबादत है वो तो अपनी जगह, लेकिन एक खास सवाब भी मिलता है दुरूद के साथ ताजील फरज की दुआ करने वालों को। अल्लाहु अकबर। अब यहां मौका आ गया है तो एक छोटा सा वाकया पेश करके फिर गुजर जाऊंगा, अपने सवाल के जवाब पर आ जाऊंगा। वो वाकया क्या है कि अल्लामा अमीनी के, जिनकी कब्र नजफ अशरफ में वाक़ है, नजफ अशरफ के अबरज उलमा में से इनका ताल्लुक, अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह, कि जो ऐसा अली का आशिक था कि सारी जिंदगी अली की विलायत की दलीलें जमा करने में लगा दी। न कोई दुनियावी जाहो मनसब, न कोई इज्जतें, न कोई शोहरतें, किसी चीज की तलाश में नहीं था यह आशिक। हां था तो किस चीज की तलाश में था? मुझे कहीं दुनिया में किसी जगह से अली की विलायत की हक्कानियत पर कोई दलील मिल जाए, मुझे गदीर के सबूत में कोई दलील मिल जाए, कोई रावी मिल जाए, कोई सनद मिल जाए, कोई कुतुब मिल जाए। 50 साल के अरसे तक इसी काम में मशगूल रहे, नतीजतन एक जखीम मौसुआ, एक इंसाइक्लोपीडिया अल गदीर के नाम से हमें और कयामत तक आने वाली नस्लों को तोहफे के तौर पर पेश कर गए कि अब इस मौसुआ के बाद कोई गदीर की हक्कानियत पर इनकार नहीं कर सकता। तवज्जो है, पहले तो बहुत से उठते थे और कहते थे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अल्लाह हु अकबर। दो लोगों की दो किस्में होती है ना, एक होते हैं जो असले वाकये का इनकार कर देते हैं और दूसरे वो होते हैं कि जो वाकये को मानते हैं लेकिन एतकाद नहीं रखते, ईमान नहीं लाते। तवज्जो है, मिसाल दे दूं, अबू जहल। अबू जहल क्यों कहा गया ऐसे? ये उन लोगों में से नहीं था कि जिसे नबी की नबुवत पर शक हो, ये जानता था, इल्म रखता था, मोजजात देख चुका था, लेकिन दिल से ईमान नहीं लाया था, लिहाजा इल्म रखते हुए भी उस पर अमल नहीं किया। खुदा ने इसे कयामत तक अबू जहल का लकब दे दिया। तवज्जुहात हैं। तो लिहाजा लोगों की दो किस्में होती हैं, एक है जो असले वाकये का इनकार कर दे, दूसरे वो जो वाकये का इकरार करते हैं लेकिन उस पर ईमान नहीं लाते। अल्लामा अमीनी ने अपनी किताब अल गदीर इंसाइक्लोपीडिया, मेरे नौजवान जाकर देखिएगा, उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है, मौसूअतुल गदीर किताब लिखकर पहले वाले लोगों के रास्ते को बंद कर दिया। अब कयामत तक कोई आकर ये तो कह सकता है कि मैं अली की विलायत को तस्लीम नहीं करता, मैं अली को अपना इमाम नहीं मानता, लेकिन किसी में इतनी मजाल नहीं है कि अब कह दे कि गदीर हुआ ही नहीं था। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, एक सलावत पढ़ी अमीरुल मोमिनीन की आदमत पर। जरा अंदाजा कर रहे हैं, अल्लामा अमीनी ने दुनिया में किस जगह का सफर नहीं किया। हमारा आप सफर करते हैं तो सैर व तफरी के लिए करते हैं, या मुकद्दस सफर करते हैं तो जियारत के लिए जाते हैं, खुद के सवाब के हुसूल के लिए जाते हैं। अल्लामा अमीनी दुनिया में कहां सफर करके नहीं गए? यूरोप भी गए, एशिया में भी गए, हर हर मुल्क में गए, अफ्रीका तक का सफर किया। कहां का सफर था कि जो अल्लामा अमीनी ने नहीं किया? क्यों सफर कर रहे थे? जहां खबर मिल जाती, तवज्जो कीजिएगा, अज्जल फरजहुम कहने का सवाब, जहां खबर मिल जाती कि फला मुल्क में फला शहर की कोई एक लाइब्रेरी, कोई एक मकतबा है कि जहां पर अली की विलायत को साबित करने के लिए एक दलील या एक हदीस मिल जाएगी, एक हदीस, उस एक हदीस के लिए अल्लामा यमीनी सफर फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। हदीस मासूम है ना, अफदलुल अमाल अहमदुहा। हम तो अपने घर में बैठकर या अजा खाने तक आके मजलिस सुन लेते हैं, अहले बैत की मारिफत में इजाफा कर लेते हैं, वो अल्लामा अमीनी जो दर दर भटकते रहे, हर हर शहर की ठोकरें खाते रहे, अपनी सारी जिंदगी अली के नाम पर चलते फिरते रहे, सफर करते रहे, उनके अमाल का अजर क्या होगा? अफजल तरीन अमल वो होता है कि जिसमें मशक्कत ज्यादा हो। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, वो अल्लामा अमीनी, अल्लामा अमीनी वादे हो गए, वो अल्लामा अमीनी सारी जिंदगी अली के इश्क में जो मेहनत की, जो सफर किया। मैं और आप कह देते हैं मैं अली का आशिक हूं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं, ये काम बहुत आसान है, लेकिन इस इश्क की राह पर चलना ये कोई आसान काम नहीं है। तवज्जो है, सारी जिंदगी की मेहनत, सारी जिंदगी की जमा पूंजी, अपनी जेब से किताबें खरीदा करते थे अल्लामा अमीनी, ऐसी किताबें जिनमें फकत ये सुना हो कि इसमें गदीर पर कोई दलील है। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी की मेहनत को जमा कर दिया और उस जमा आवरी का नाम अल गदीर लिखा। सोच सकते हैं अमीनी के इस अमल का अजर कितना होगा, मौला के किस कदर करीब थे या अल्लामा अमीनी। एक नतीजा देना है ताकि दोबारा अपनी बहस पर आ जाऊं, मौला के किस कदर नजदीक थे मौला का ये आशिक कि जिसने अपने इश्क को साबित भी किया, फकत जुबानी कलामी इश्क नहीं किया। अजीब वाकया मिलता है, अजीब वाकया मिलता है। अब बात से बात निकलती है तो पेश कर देता हूं, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह अल्लामा अमीनी एक रोज बड़ी मुश्किल के आलम में मौलाए कायनात की जरी के सिराने आकर बैठे हैं। खुदा हम सबको नजफ अशरफ और तमाम मकामात मुकद्दसा की ज्यारत नसीब फरमाए। मेरे पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन की जरिए अकदस के सिराने बैठे हैं, कोई हाजत मांग रहे हैं, पूरी नहीं हो रही, कोई दुनियावी मुश्किल थी अल्लामा को। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर आकर बैठ गए। अब वफादारी यही तो होती है, एक बार अगर हाजत पूरी ना हो तो दर छोड़ नहीं दिया जाता। दूसरे दिन फिर आकर बैठ गए। कई दिनों तक अल्लामा अमीनी अपनी हाजत तलबी फरमाते रहे मौला की बारगाह में, लेकिन अल्लामा अमीनी की मुश्किल हल नहीं हो रही थी। देखिएगा कैसा आशिक है और क्या मकाम है मौला की बारगाह में इसका। अचानक एक दिन मंजर देखा कि इराक का एक बद्दू अरब वो जो बादिया नशीन होता है, जिसे आम जुबान में देहाती कहते हैं, कि जिसका बात करने का एक खास अंदाज होता है, जो मोमिनीन ज्यारत कर चुके हैं, खुदा सबको नसीब फरमाए, जो ज्यारत कर चुके हैं वो जानते हैं कि दूर दराज इलाकों से जो जायर आता है उसका मौला से बात करने का, मौला से मुखातिब होने का अंदाज ही कुछ और होता है। वो बहुत ज्यादा अदब और आदाब का ख्याल नहीं रखता जिस तरह बाज मोमिनीन या खास तौर से उलमाए आलाम रखते हैं। वो अपनी बेतकल्लुफी में बात करता है मौला से, और ये भी इश्क का एक मरहला है। एक अल्लामा अमीनी ने देखा, कई दिनों से अपनी हाजत तलब कर रहे हैं, एक दिन देखा कि एक शख्स, एक बादिया नशीन, एक बद्दू अरब दाखिल होता है, लंगड़ा कर चल रहा है, मौला की जरी को जोर से थाम कर हिलाता है और कहता है, या अली, मैं आपके दर पर आया हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं यहां से शिफा लेकर जाऊंगा। कुछ देर बैठा, जब वापस पलटा तो उसका जख्म दुरुस्त हो चुका था, बिल्कुल सही चलता हुआ रोजे से बाहर जा रहा था। अली के लिए ये मोजज़े दिखलाना कोई बड़ी बात नहीं है, तवज्जो है। अल्लामा अमीनी ने जब ये मंजर देखा, अल्लाह अकबर, कई दिन से अपनी छोटी सी दुनियावी हाजत के लिए मौला के पास आ रहे थे, अल्लामा अमीनी ने जब ये मंजर देखा तो अफसरदा हो गए। दिल में ख्याल आया, अली के हजरत में, अली के महजर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अली कहते ही उसको हैं जो दिलों का हाल जानता हो। दिल में ख्याल आया, मौला, मैं हकीर नाचीज, लेकिन आपका आशिक हूं, अपनी सारी जिंदगी आपकी विलायत को साबित करने में लगा दी। मैं कई दिनों से आकर बैठ रहा हूं, आपसे अपनी हाजत को मांग रहा हूं, मेरी हाजत पूरी नहीं हुई। ये गैर शख्स बाहर से आया, कुछ लम्हे आपके महजर में गुजारे और अपनी हाजत पूरी करवा कर चला गया। इसी अफसरदगी के आलम में कुछ देर आलम ख्वाब में चले गए, नींद तारी हो गई, ख्वाब में मौलाए कायनात की ज्यारत हो गई। अल्लाह अकबर, इससे बढ़ के कोई मोमिन क्या मांग सकता है? असलन मोमिन तो मौत की तमन्ना भी इसलिए करता है क्योंकि सुन रखा है अली तशरीफ लाते हैं। तवज्जो है, ख्वाब में मौला की ज्यारत हो गई और मौला ने अमीनी को मुखातिब किया, ए अमीनी, गम क्यों करते हो? तुम में और इसमें एक फर्क है, मौला, क्या मुझसे कोई कोताही हो गई? नहीं ए अमीनी, तवज्जो कीजिएगा, क्या इश्क है, क्या मौला की नजरे रहमत कैसी है अमीनी पर? कहते हैं, नहीं ए अमीनी, तुम तो अपने हो, ये गैर था। अगर अली आज इसकी हाजत को पूरा नहीं करता तो ये कल दोबारा ना आता। तुम्हें तो हम जानते हैं, तुम्हें जितने दिन भी लग जाएं, तुम्हें लौट कर हमारे ही दर पर आना है, तुम तो हमारे ही दर के हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। लेकिन वो किसी और दर पे चला जाता, लिहाजा उसे नवाज दिया और तुम्हें इंतजार कराया। ये मकाम है, ये कुर्बत है अमीरुल मोमिनीन से। और जब सारी जिंदगी कोई अली की खिदमत में लगा दे तो अली किसी का एहसान नहीं रखते। ये अल्लामा अमीनी। इस वाकये को बयान करने का मकसद, इन तमाम बातों को, अल्लामा अमीनी की तमाम मशक्कतों को बयान करने का मकसद अब निचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। वो अल्लामा अमीनी जो अली का ऐसा आशिक है, अली से इतना करीब है, अली के लिए इतनी जहमतें उठाई, सारी जिंदगी मेहनत करता रहा, एक किताब अल गदीर लिखी, उस किताब में इब्तिदा में एक जुमला लिखा। जब उलमा कोई किताब लिखे तो उसके शुरू में एहदा लिखते हैं कि इस किताब को किसे हदिया किया जा रहा है। एहदा में क्या लिखा कि मैं अमीनी अपनी सारी जिंदगी की इस मेहनत, किताब अल गदीर के लिखने का, इसकी जमावरी का सवाब किसके नाम कर रहा हूं? हर उस मोमिन के नाम कर रहा हूं कि जब भी दुरूद पड़ता है तो साथ में अज्जिल फरजहुम कहता है। अल्लाह अकबर, एक दुरूद पढ़िए कायम आले मोहम्मद के आलम। तो बड़े बड़े उलमा, अज्जिल फरजहुम, ए खुदा आले मोहम्मद की कुशाइश में जल्दी फरमा, जहूर में ताजील फरमा। आज के बाद इस मजलिस से ये तहैया करके उठें कि जब भी दुरूद पढ़ेंगे अज्जिल फरजहुम के साथ पढ़ेंगे, ताकि अल्लामा अमीनी की मेहनतों में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। अल्लाह अकबर। उलमा ताकीद कर रहे हैं ताजील फरज की दुआ की। आइम्मा ने रिवायात में फरमाया, हुक्म दिया चाहने वालों को, मौला गैबत में क्या करें, ताजील फरज की दुआ करो, जहूर में ताजील की दुआ करो। एक तरफ तो ये वाकयात, ये दुआ का हुक्म, दूसरी जानिब खुदा फरमा रहा है कि जब तक तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें पूरी ना हो जाएं तब तक जहूर नहीं होगा। चाहने वाले का हक बनता है सवाल करें, फिर ये दुआएं कैसी? सवाल वाजे है। अब आइए जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हदीस में इमाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने कायम में तमाम अंबिया की गैबतों के औकात को, तमाम की गैबतों की मुद्दतों को रख दिया है। अब वो गैबतों की मुद्दतें कितनी हैं अव्वलन ये हम नहीं जानते, लेकिन इमाम ने ये नहीं बताया कि ज्यादा से ज्यादा कब तक जुहूर नहीं होगा। अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। दिक्कत कीजिएगा, इमाम ने क्या फरमाया, जब तक अंबिया की गैबतों की मुद्दतें पूरी ना हो जाएं तब तक जहूर नहीं होगा। जहूर ना होने की कमतरीन मियाद इमाम ने बताई है, अगरचे वो वक्त भी हम नहीं जानते, इल्म नहीं रखते, हमें नहीं मालूम ये कितने बरस है, कितने 100 साल हैं या कितने 1000 साल हैं या कितने लाख साल हैं, हम नहीं जानते। लेकिन इमाम ने जहूर के न होने की कमतरीन मुद्दत को बता दिया कि कम से कम जब तक तमाम अंबिया के जमानों के, तमाम अंबिया की गैबतों की मुद्दतें न गुजर जाएं तब तक जहूर नहीं होगा। क्या अंबिया की जैसे ही गैबत की मुद्दतें तमाम हो जाएंगी क्या फौरन जहूर हो जाएगा? नहीं, इमाम ने ये नहीं बताया, इमाम इससे खामोश है। अब इसके बाद भी खुदा इस गैबत को जितना तवील करना चाहे उसका इरादा है, उसकी मंशा है, उसकी मर्जी है। हाँ, अब दुआए फरज, दुआए ताजील जहूर यहां इस मुद्दत के लिए काम आएगी कि जो गैबत अंबिया की मुद्दतें गुजर जाने के बाद की मुद्दत है। अब ऐन मुमकिन है खुदा का इरादा ये हो कि अंबिया की गैबत की मुद्दतें गुजर जाने के बाद भी कई 1000 साल मेरे कायम को गैबत के पर्दे में रखना है, लेकिन मोमिन की ये दुआ है कि जो इस जहूर को जल्दी कर दे, खुदा के इरादे में तब्दीली का बायस बन जाए। तवज्जो है, अकीदा बदा तो हमारे पास है ना। इससे ज्यादा इस जवाब की तफसील में नहीं जाना चाहता, जिन तक बात पहुंच गई है एक दुरूद पढ़ दीजिए कायम आल मोहम्मद की आदमत पर। अब जब यहां तक बात वाजे हो गई, तवज्जोहात मेरे साथ हैं अजीजों, कम से कम मुद्दत बताई जा रही है, जब तक अंबिया की गैबतों की मुद्दतें ना आ जाएं तब तक जहूर नहीं होगा। क्या जैसे ही मुद्दतें गैबतें अंबिया मुकम्मल हो जाए क्या फौरन जहूर हो जाएगा? नहीं, इमाम खामोश है। यहां मोमिन की दुआ काम करेगी, यहां मोमिन की दुआ कारगर होगी, यहां लोगों का इश्क काम करेगा, उन्हें कितनी जल्दी है अपने इमाम से मिलने की। खुदा हम सबको इमाम के नासिरान में शुमार फरमाए और मेरे मौला के जहूर में ताजील फरमाए। ताजील जहूर इमाम के लिए एक और दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात वाजे हो रही है अजीजों, तवज्जोहात मेरे साथ हैं। अब जरा गुफ्तगू को एक मंजिल आगे बढ़ाएं। जब हदीस वाजे हो गई कि तमाम अंबिया की गैबतों की जो सुन्नतें हैं वो मेरे मौला में जमा हो जाएंगी, तो अब हम गुफ्तगू के असल मरहले पर आ जाते हैं कि वो कौन से अंबिया हैं और उनकी कौन सी सुन्नतें हैं जो इमाम जमाना में जारी होंगी। बहुत अहम मौजू। अगर इमाम की मारिफत को बढ़ाना है, इमाम को पहचानना है, तो इन अभास को हजम करना पड़ेगा, इन्हें समझना पड़ेगा, इन्हें गौर से सुनना पड़ेगा। एक और रिवायत के जेल में पेश करता हूं कि जिस रिवायत में मेरे चौथे सरकार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातो वस्सलाम, मेरे चौथे इमाम रावी को मुखातिब करके फरमाते हैं कि हमारे कायम फिल कायम मिन्ना सुन्नतुम मिन अबीना आदम व नूह, हमारे कायम में नबीउल्लाह आदम और नूह की सुन्नतें पाई जाती हैं। मैं अंबिया के नाम लेते जाता हूं, सामईन और नाजरीन गिनते चले जाइए, नबीउल्लाह आदम और नूह की सुन्नतें पाई जाती हैं। वह सुन्नतुम मिन इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत पाई जाती है। वह सुन्नतुम मिन मूसा, नबी अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह मूसा की सुन्नत पाई जाती है। वह सुन्नतुम मिन ईसा, नबी अल्लाह ईसा की सुन्नत पाई जाती है। वह सुन्नतुम मिन अय्यूब, नबी अल्लाह अय्यूब की सुन्नत पाई जाती है। वह सुन्नतुम मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, कितने अंबिया हो गए? चौथे इमाम ने कितने अंबिया बताए? सात अंबिया। और ये फकत एक रिवायत है, ऐसी कई रिवायात हैं कि जिन रिवायतों में मुख्तलिफ अंबिया की मुख्तलिफ सुन्नतों को जिक्र किया। मैं चंद ही इस मिंबर से पेश करूंगा, फिर मैं अपने मौजू को मुकम्मल करने की खातिर अगली मंजिल पर चला जाऊंगा। सात अंबिया की सुन्नतें हैं कि जो हमारे कायम में हैं। कौन से इमाम बता रहे हैं? चौथे सरकार बता रहे हैं। रावी ने फौरन सवाल कर लिया, मौला वमा तिलका सुनन, मौला वो कौन सी खुदा की सुन्नतें हैं जो उन सात अंबिया में थी और उनकी सुन्नतें हमारे कायम में खुदा ने रखी हैं। अब इमाम ने सुन्नतें गिनवाना शुरू की। अल्लाह अकबर। अम्मा सुन्नत अबीना आदम व नूह, जहां तक पहले दो अंबिया आदम और नूह की सुन्नत की बात है, खुदा की वो कौन सी सुन्नत थी जो इन दोनों अंबिया में थी और हमारे इमाम में है? चौथे इमाम फरमाते हैं फकूलुल उमर, तूलानी उम्र। अल्लाह अकबर। क्या नूह की उम्र के तूलानी होने से किसी को कोई इनकार है? नहीं, 950 साल तो नूह ने फकत अपनी कौम में तबलीग की है। ये तो फकत तबलीग का अरसा है। इससे पहले का अरसा, वो अरसा के जो अजाब इलाही आ रहा था, सैलाब था, नूह अपनी कश्ती में थे, और उसके बाद जब दुनिया को दोबारा आबाद किया, वो सारा अरसा अलग है। 950 साल फकत जो कुरान में है वो फकत तबलीग नूह के लिए। नूह की उम्र और आदम की उम्र मेरे वक्त के इमाम की तूलानी उम्र पर दलील है। अब हर वो इंसान के जो कुरान पर अकीदा रखता है, उसे ये हक नहीं है कि इमाम जमाना की इमामत और गैबत का फकत इसलिए इनकार कर दे कि इतनी तवील उम्र किसी की नहीं हो सकती। नहीं, अल्लाह ने दलील के तौर पर पहले ही अपने अंबिया को इतनी तवील उम्रें दे दी हैं। बात पहुंच रही है? एक मुहावरा है ना अंग्रेजी का, जिसका तर्जुमा क्या है, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। वो मुसलमान के जिसकी एक लारैब किताब कुरान में नबी अल्लाह आदम और नूह की तवील उम्र लिखी हुई है, उसे मेहदी आखिरुल जमान की तवील उम्र क्यों कर हजम नहीं होती? जहां तक बात पहुंच गई, एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद आलम मोहम्मद। यह है नबी अल्लाह आदम और नूह की उम्र। अल्लाह अकबर। बात को एक मंजिल और आगे बढ़ाते हैं। नबी अल्लाह आदम और नूह के बाद किनकी मिसाल आई थी? कोई भी जवाब दे, जो भी सामे मुतवज्जे था। जज़ाकअल्लाह। नबी अल्लाह इब्राहिम की गैबत, नबी अल्लाह इब्राहिम की सुन्नत। रावी ने सवाल किया, मौला नबी अल्लाह इब्राहिम की वो कौन सी सुन्नत है जो आखिरी इमाम में होगी? फरमाया फखिफाउल विलादत वल इतिजाल। खलीलुल्लाह की दो सुन्नतें हैं कि जिनमें वो मेरे वक्त के इमाम पर दलील बन गए। इस जुमले पर गौर कीजिएगा, दो सुन्नतें कि जो खलीलुल्लाह में भी थी और मेरे वक्त के इमाम में भी है। पहली सुन्नत खिफाउल विलादा, विलादत का पोशीदा होना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो कीजिएगा, खुदा ने अपने आखिरी वसी, अपनी आखिरी हुज्जत को इस दुनिया में भेजने से पहले ऐसा इंतजाम कर दिया कि अब अक्ल रखने वाला, हिदायत चाहने वाला किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता। किसी लहजे, किसी जगह, किसी किनारे से भी खुदा ने दलील के बगैर नहीं छोड़ा महदवियत के अकीदे को। अल्लाह अकबर। लोग इमाम जमाना की विलादत पर शक करते हैं? आओ और बताओ नबी अल्लाह इब्राहिम की विलादत के बारे में क्या कहोगे? किस्सा क्या है कि इब्राहिम के चचा आदम, अब बात आ गई है तो पेश करनी पड़ेगी ताकि कनेक्शन समझ आ सके नबी अल्लाह इब्राहिम की सुन्नत में और वही सुन्नत जब मेरे वक्त के इमाम में जाहिर होगी। कैफियत क्या है? मेरे छठे इमाम बता रहे हैं। हम एरो गैरों से वाकयात नहीं लिया करते, हम अंबिया के वाकयात भी आइमा से लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। छठे इमाम बताते हैं कि नबी अल्लाह इब्राहिम की विलादत से पहले उनके चचा आदर, कि जिनका कुरान में बारहा तज़किरा आया है कि जो ईमान नहीं लाए थे, नबी अल्लाह इब्राहिम के चचा आदर नमरूद के खास वज़रा में से थे। नमरूद के मुनज्जमीन में से थे, इल्मे नुजूम जानते थे, और उस इल्मे नुजूम की बुनियाद पर, अब ये वाकया है लेकिन मैं क्या करूं, पेश करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाकये को समझ कर ही अकीदा महदवियत में और पुख्तगी आ सकती है, मारिफत इमाम जमाना में इजाफा हो सकता है, जो मेरा और आपका यहां हाजिर होने का मकसद है। आदर ने इल्म नुजूम के जरिए से पता लगा लिया इल्म नुजूम कितना हक है कितना बातिल है, कौन इसमें महारत रख सकता है कौन नहीं रख सकता, ये सारी एक अलग मुस्तकिल बहस है, फिर किसी और दिन पेश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये याद रखे मेरा सामे कि मेरे इमाम ने साफ फरमा दिया है इल्म नुजूम आया बरहक है, यकीनन बरहक है, लेकिन इसका यह मतलब है कि जो चाहे वो इल्म नुजूम से हिसाब किताब लगाकर लोगों को उनका मुस्तकबिल बताता फिरे, नहीं, इमाम ने इल्म नुजूम के बारे में कायदा दिया। अब बात आ गई तो पेश कर दूं, बड़ा ही मुबतला भी मसला है माशरे में, ये मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा धोखे में और इस किस्म की गुमराहियों में पड़ते जा रहे हैं। तो दो जुमले सुनते जाइए और फिर गुफ्तगू को दोबारा जोड़ दूंगा इस वाकये से। अगर सुनना चाहते हैं, तवज्जोहात आमादा हैं, तो मिलकर एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। एक शख्स इल्मे नुजूम का माहिर अमीरुल मोमिनीन के पास आया कि जब मौला जंगे सिफीन के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, अपने इल्म पर बड़ा नाज था, अली की शख्सियत को नहीं जानता था, कहने लगा या अली, अब देखें अली को मशवरा दे रहा है, अल्लाहु अकबर, आइम्मा को मशवरा नहीं दिया जाता, उनके सामने सरे तस्लीम खम किया जाता है, अली को मशवरा देने आया, अली इस वक्त आपका सितारा शदीद तपिश में है, इस वक्त आपके सितारे को आग लगी हुई है। अब ये इल्मे नुजूम की खास ताबीर है, माहिर फन अफराद समझेंगे इस ताबीर को, या अली इस वक्त जो आपका सितारा है वो शदीद गर्दिश में है और उसमें आग लगी हुई है, आपका सितारा जल रहा है, लिहाजा इस वक्त जंग में ना जाइए, आप शिकस्त खा जाएंगे, वल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या यदुल्लाह को भी कभी शिकस्त हो सकती है, तवज्जो है। अली को मशवरा दिया, अली ने जब उसको अली ने जब उसकी ये बात सुनी तो एक मरतबा उसके चेहरे की तरफ देखा, अली को मशवरा देने आया है, अली ने कहा क्या तू इल्म नुजूम जानता है, कहने लगा या अली मैं इल्म नुजूम में माहिर हूं। अब अली ने कुछ सवाल किए, लाजवाब हो गया, उसके बाद अली ने एक राज से पर्दा उठाया, फरमाया जिसे तू ये समझ रहा है कि मेरा सितारा गर्दिश में है और मेरे सितारे को आग लगी हुई है, वो जल रहा है जिस वजह से मैं शिकस्त खा जाऊंगा, तो सुन यही मेरी जीत की वजह बन जाएगी। अल्लाहु अकबर, मैंने अर्ज किया था ना, अली न सिर्फ मजहरे अजायब है, अली मुजहिरुल अजायब भी है, ना अली न सिर्फ ये कि अली में अजायबात का इजहार होता है बल्कि अली अजायबात दिखलाते भी हैं। परेशान हो गया, मौला ये कैसे हो सकता है, मेरा इल्म तो ये नहीं कहता, मेरा हिसाब किताब तो ये नहीं बताता। अली फरमाते हैं वो जिस वजह से तुझे मेरा सितारा जलता हुआ नजर आ रहा है वो मेरे ही सितारे की आग है जो दूसरों को जलाएगी। अल्लाह अकबर, इमाम हर इल्म में माहिर हुआ करता है, अल्लाह अकबर। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने इल्म नुजूम का यह हिसाब उस शख्स को बताया तो क्या इसका यह मतलब है कि हम सबको छोड़कर, खुदा पर भरोसा छोड़कर इल्म नुजूम के और नुजूमियों के पीछे लग जाएं? नहीं, मासूम ने इसका भी हल बताया, जब छठे इमाम के पास एक शख्स आया, मौला क्या इल्म नुजूम बरहक है, मौला ने फरमाया ये बरहक है, ये आसमानी इल्म है, ये उन उलूम में से है कि जो अल्लाह ने अपने अंबिया को तालीम दिया था। अल्लाह अकबर, तो फिर मौला क्या मैं इस इल्म को सीखूं, अल्लाह अकबर। अब मासूम ने कुलिया एक कायदा एक फॉर्मूला दिया और जो आले मोहम्मद की मानने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, इस कायदे को अपने पल्लू से बांध लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। मौला फरमाते हैं इल्म नुजूम का इल्म, अल्लाहु अकबर, कलीलुहु ला यन्फा व कतीरुहु ला युद्रक, इल्म नुजूम में नुजूमी का हिसाब उस वक्त तक सही बात नहीं बता सकता जब तक वो तमाम सितारों की हरकत का इल्म ना रखता हो, तमाम सितारों की पोजीशन को न जानता हो। जो है जब तक कोई नजूमी तम इस कायनात पर, न फकत रूए जमीन के गिर्द नजर आने वाले, इस कायनात में जितने सितारे मौजूद हैं, जब तक किसी इंसान को उन तमाम की हरकत का इल्म ना हो जाए, उन तमाम के सुकून और उन तमाम के मकाम और मंजिल का इल्म ना हो जाए, तब तक ये इल्म नुजूम फायदेमंद नहीं है। अल्लाह अकबर। अब लोगों की मुश्किल यह है, गैर मासूम की मुश्किल यह है कि न वो सारे सितारों की हरकत और सकनात का इल्म रख सकता है, और जब तक उसे यह इल्म मुकम्मल हासिल ना हो जाए तब तक यह इल्म किसी काम और फायदे का नहीं है। अल्लाह अकबर। तो क्या नतीजा हुआ, इल्म नुजूम हक्कानियत रखता है लेकिन फकत मासूम ही इस इल्म को मुकम्मल तौर पर जानते हैं, किसी गैर मासूम में इस इल्म की मुकम्मल ताब लाने की ताकत नहीं है। अगर मेरे सामईन और नाजरीन तक ये पैगाम पहुंच गया, बात वाजे हो गई, तो एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बात को और आगे बढ़ाते हैं। आजर इब्राहिम के चचा नजूमी थे, मुझे नहीं मालूम किस हद तक मुकम्मल कर पाऊंगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है बात को। आजर ने नमरूद को बताया कि तुम्हारी मुमलकत में अनकरीब एक ऐसे बच्चे की विलादत होगी कि जो तुम्हारी तख्त को, तुम्हारी बादशाहत को, तुम्हारे तख्त को उलट देगा। वही किस्सा बेआईन ही जो नबी अल्लाह मूसा के साथ पेश आया, बस फर्क यह था कि वहां बताने वाला बाहर का शख्स था, यहां हजरत इब्राहिम के कवीये में बताने वाला खुद घर का भेदी था, नहीं जानता था कि वो हमारा ही भतीजा है। नमरूद ने सवाल किया, क्या उस बच्चे की विलादत हो चुकी है? कहा, नहीं, अभी विलादत नहीं हुई है लेकिन अनकरीब होने वाली है। नमरूद ने जब यह सुना तो हुक्म दे दिया कि तमाम औरतों को, खवातीन को उनके खावंदों से अलग कर दिया जाए और मुकम्मल इलाके की तफ्तीश की जाए, जो खातून भी हामिल हो उसके बतन को चाक करके बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह, इस कदर खौफ होता है इन दुनियावी बादशाहों को अपनी तख्त का, अपनी ममलिकत का। अल्लाह अकबर। नतीजा क्या हुआ, हजरत इब्राहिम की वालिदा हजरत इब्राहिम से हामिल हुई लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई, वो खुदा जिसको रखे उसको कौन चखे, खुदा का करना ऐसा हुआ कि नबी अल्लाह इब्राहिम की वालिदा पर हमल के आसार नमूदार ही नहीं हुए। अल्लाह अकबर। इब्राहिम थे शिकम मादर में लेकिन किसी को महसूस नहीं होता था कि इस शिकम में कोई बच्चा भी है, यहां तक कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो नबी अल्लाह इब्राहिम की वालिदा शहर से दूर चली गई, एक गार का इंतखाब किया, उस गार में हजरत इब्राहिम की विलादत हुई और वालिदा ने खुदा पर तवक्कुल करते हुए उस गार को पत्थरों से बंद कर दिया। अब नबी अल्लाह इब्राहिम की गिज़ा क्या थी, वो खुदा के जो बच्चे को शिकम मादर में गिजा दे सकता है, क्या अपने अपने एक नबी को गार में गिजा नहीं दे सकता? तवज्जो है, यहां तक कि नबी अल्लाह इब्राहिम जवान हो गए। अब जब जवान हो गए तब अपनी कौम के सामने तशरीफ लाए। यह है नबी अल्लाह इब्राहिम की विलादत। मासूम ने क्या फरमाया कि नबी अल्लाह इब्राहिम पर जो खुदा की सुन्नतें जारी हुई उनमें से एक है खिफाउल विलादा, विलादत का पोशीदा होना, के जो हमारे कायम में भी पाई जाएगी। अब आइए हमारे आखिरी मौला का तज़किरा करें, जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा, खुदा सबको सामर्रा में इस मुकद्दस मजार की ज़ियारत नसीब फरमाए। जनाब नरजिस खातून खुद बयान करती हैं और इमाम अस्करी की फूफी जनाब हकीमा ने इस रिवायत को नकल किया। वो क्या रिवायत है कि एक दिन मेरे भतीजे हसन अस्करी ने मुझे पैगाम बुला भेजा कि ऐ फूफी जान, आज आप हमारे घर में ठहरिएगा, आज रात आप हमारे घर में गुजारिए। जब मैं घर में आ गई मैंने पूछा क्या माजरा है, तो फरमाने लगे, ऐ फूफी अम्मा, आज खुदा की उस हुज्जत की विलादत होने वाली है कि जिसे जालिम हमेशा से तलाश कर रहा है, कि जिसका जालिम दर पे है, कि जो रूए जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। अल्लाह अकबर। जनाब हकीमा कहती है, जब मैंने ये सुना तो मैं हैरान हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि शहजादी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा पर हबल का कोई असर नहीं था, कोई अलामत नहीं थी कि जो बताती कि ये मां बनने वाली हैं या ये हामिल हैं। अल्लाह अकबर। खुदा की कुदरत, उसके काम वही जाने। इमाम हसन अस्करी ने बताया, जनाब हकीमा, इमामत के खानदान की परवरदा क्या अजीमुल मर्तबत खातून इमाम की बात पर यकीन रखा और रात को इमाम अस्करी के घर ठहर गई। क्या हुआ, बहुत मुख्तसर करता चलूं। फरमाती है, मैं रात में ईशा की नमाज पढ़ के सो गई, उस वक्त तक जनाब नरजिस पर हमल का कोई असर नहीं था, कोई अलामत नहीं थी। खिफाउल विलादा देख रहे हैं, खुदा के नबी की सुन्नत का कैसे इजरा हो रहा है उसके इमाम पर। अल्लाह अकबर, खिफाउल विलादा, ईशा की नमाज तक कोई अलामत नहीं थी हमल की। कहती है, मैं सो गई, इमाम जमाना की वालिदा भी आराम के लिए चली गई। आधी रात को जब इबादत के लिए, नमाज शब के लिए मैं उठी और जनाबे नरजिस भी उठी, तो उस वक्त भी हमल का कोई असर नहीं था जनाबे नरजिस पे। अल्लाह अकबर। जनाबे हकीमा फरमाती है कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद ये वो रात ना हो। फकत ख्याल का आना था कि बराबर वाले कमरे से इमाम हसन अस्करी की आवाज आई, ए फूफी अम्मा, अमरे खुदा में शक न कीजिएगा। अल्लाह अकबर। फरमाती है, एक लम्हे को जो ख्याल आया था वो भी रफ हो गया। मैं मुकम्मल यकीन से वुजू किया और मुसल्ला इबादत पर आ गई। जब मैं इबादत कर रही थी तो अचानक मैंने देखा कि रात की उस तारीकी में वो गुरफा, वो कमरा के जिसमें मैं और इमाम हसन अस्करी की जौजा थी, अचानक वो कमरा नूर से पुरनूर हो गया और कुछ देर तक मुझे कुछ सुझाई ना दिया, कुछ वाजे न हुआ। यह है खिफाउल विलादा, विलादत का पोशीदा होना। मेरे लिए कुछ वाजे न हुआ, कुछ देर बाद जब नूर की रोशनी कुछ कम हुई और मेरी आंखें देखने के काबिल हुई, तो मैंने क्या देखा, जनाबे नरजिसे खातून के सिरहाने एक छोटा सा नौमौलूद बच्चा है कि जो अपने आप को सजदाए इलाही में रखे हुए है और क्या कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह व अशहदु अन्न जद्दी अली जुन अमीरुल मोमिनीन। हर हर इमाम का जिक्र करता जाता है, यहां तक कि 11वें इमाम पर आता है, अशहदु अन्न अबी हुज्जतुल्लाह, और उसके बाद कहता है वो अशहदु अन्नी हुज्जतुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह की हुज्जत हूं। अल्लाह अकबर, कैसे खुदा ने पोशीदा रखा अपनी हुज्जत की विलादत को, जैसे नबी अल्लाह इब्राहिम की विलादत को रखा था। असलन हमल के आसार नहीं थे। मेरे इमाम की जात बाबरकत पर एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात वादे हो रही है, बात पहुंच रही है मेरे सामने तक। अल्लाह अकबर, थक कर तो नहीं सुन रहे हैं, बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा अजीजों। मेरे इमाम की विलादत हो गई और वो कनीजे या वो गुलाम के जिसे बादशाह वक्त ने इमाम अस्करी के घर जासूसी के लिए मुअय्यन किया था, उन्हें भी कानो कान खबर न हुई। उधर विलादत हुई, इधर बराबर वाले कमरे से 11वें आका की सदाई, फूफी अम्मा, मेरे शहजादे को मेरे पास ले आइए। और उधर बाप और बेटे में, बाबा और फरजंद में, वालिद और मौलूद में राजो नियाज शुरू हो गया। ये इमाम जमाना की विलादत थी कि जो पहली बार इस तरीके से नहीं हुई, यही सुन्नत इलाही नबी अल्लाह खलील अल्लाह इब्राहिम में भी जारी हुई थी। क्यों जारी हुई थी, ताकि जब हजरत हुज्जत की विलादत हो तो कोई शक ना कर सके, दलील के तौर पर इब्राहिम की विलादत मौजूद हो। अल्लाह अकबर। पहली पहली सुन्नत इब्राहिमी के जो मेरे वक्त के इमाम में जारी हुई, विलादत। दूसरी, वल एतजाल अनन्नास। इब्राहिम, कुरान की आयत कहती है, वअअतज़िलुकुम वमा तदउना मिन दूनिल्लाह। हजरत इब्राहिम का कौल कुरान ने नकल किया, जब अपने चचा को अपनी कौम को समझाया और वो ना समझे तो इब्राहिम ने क्या कहा कि मैं तुमसे एतजाल करता हूँ। एतजाल यानी क्या मतलब, मैं तुमसे किनारा कशी करता हूँ, तुमसे पोशीदा हो जाता हूँ, तुमसे दूर हो जाता हूँ। वमा तदउना मिन दूनिल्लाह, ये जो बुत है जिनकी तुम परस्तिश करते हो, मैं तुमसे और इनसे अपने आप को किनारा कश करता हूँ। चौथे इमाम फरमाते हैं कि ये जो किनारा कशी थी, ये नबी अल्लाह इब्राहिम की वो सुन्नत है कि जो हमारे कायम में जारी होगी। लिहाजा अब अगर वक्त का इमाम गैबत में चला जाए, उम्मत से किनारा कश हो जाए मसलहत खुदावंदी के बायस, तो अब किसी को यह हक नहीं है कि सवाल करे कि अगर इमाम है तो जहूर फरमा कर हिदायत क्यों नहीं कर रहे। जो ये सवाल करे उसे चाहिए कि पहले नबी अल्लाह इब्राहिम पर सवाल उठाए। अल्लाह अकबर, जिनके लिए बात वाजे हो गई एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम मैंने सात अंबिया की सुन्नतों का जिक्र किया था ना, आदम और नूह की सुन्नत बयान हो गई, नबी अल्लाह खलील अल्लाह इब्राहिम की सुन्नत बयान हो गई, नबी अल्लाह मूसा ईसा और हमारे रसूल की जो सुन्नतें चौथे इमाम ने तालीम फरमाई, वहां से कल गुफ्तगू का आगाज होगा एक और नबी की सुन्नत, नबी अल्लाह अय्यूब की सुन्नत। यहां इस सुन्नत की तरफ इशारा करके आज गुफ्तगू को रोक दिया जाएगा। कल महदवियत और सुनन अंबिया का बयान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह बतौफीक इलाही कल ही सुनन अंबिया के बयान को मुख्तसरन मुकम्मल करके मवारीफ अंबिया और महदवियत का क्या ताल्लुक है इंशाल्लाह कल इस मौजू पर भी, इस जहद पर भी बात और इशारा करने की कोशिश की जाएगी। खुदा तमाम सामईन हाजरीन की तमाम जहमतों को कबूल फरमाए, तमाम की हाजतों को कबूल फरमाए। मेरे चौथे इमाम से पूछा गया नबी अल्लाह अय्यूब की क्या सुन्नत है जो कायम आले मोहम्मद में जारी होगी, फरमाते हैं अल फरज बादल बलवा, बलवा कहते हैं मुसीबत और आजमाइश को। नबी अल्लाह अय्यूब का सब्र मशहूर है कि जब अय्यूब ने बहुत सब्र किया खुदा इम्तिहान लेता रहा, इम्तिहान में इजाफा करता चला गया, औलाद छिन गई, नबी अल्लाह अय्यूब तंगदस्त हो गए, वो जितना मालो दौलत था वो सब का सब चला गया, नबी अल्लाह अय्यूब सब्र करते रहे, एक एक आजमाइश पर सब्र करते रहे, लेकिन जब आजमाइश अपने उरूज पर पहुंच गई तो अब खुदा ने अय्यूब को, जब नबी अल्लाह अय्यूब ने खुदा को सदा दी व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु रब्बी इन्नी मस्सनिया दुर, ए खुदा कुरान की आयत, ए रसूल याद करो उस वक्त को कि जब अय्यूब ने खुदा से मदद मांगी थी, ए खुदा अब मेरे हालात बहुत सख्त हो गए हैं, जब आजमाइश और सख्तियां अपने उरूज पर पहुंची तब जाकर अय्यूब की मुश्किलात आसानियों में बदल गई। इमाम फरमाते हमारे कायम में भी यही सुन्नत जारी होगी कि जब कायम की गैबत की मुश्किल और इम्तिहान सख्तरीन मरहले पर पहुंच जाएगा, जब चाहने वालों की आजमाइश सख्तरीन मुश्किल से गुजर जाएगी, तब जाकर खुदा फरज इनायत फरमाएगा और तब जाकर कायम का जहूर हो जाएगा। खुदा हमारे वक्त के इमाम के जहूर में ताजील फरमाए, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमाए और इमाम वक्त की मारिफत में इजाफा इनायत फरमाए। अज़ान मोहतरम, यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू को मसाइब से जोड़ दूं, नबी अल्लाह अय्यूब के जिनका सब्र मशहूर है, कुरान ने अय्यूब को साबिर कहा है, इन्नहु अव्वाब कहा है, इंतहाई सब्र करने वाला बंदा, वो नबी अल्लाह अय्यूब के जो एक एक आजमाइश और इम्तिहान में कामयाब होते चले गए, जानते हैं वो कौन सा इम्तिहान था कि अब सब्र अय्यूब भी जवाब दे गया। अब अय्यूब ने खुदा से दुआ की, ऐ खुदा इससे ज्यादा आजमाइश अय्यूब के बस में नहीं है, अल्लाह अकबर, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने अय्यूब को साबिर कहा है, सब्र अय्यूब मशहूर है, जानते हो कौन सी आजमाइश थी, इस आजमाइश से पहले ये सुन लीजिए कि नबी अल्लाह अय्यूब के तमाम बेटे, तमाम माल और औलाद उनसे छिन चुका था, सबकी मौत हो गई थी, नबी अल्लाह अय्यूब के पास फकत एक शय बाकी रह गई थी और वो थी उनकी जौजा, और ये जौजा कौन थी, नबी अल्लाह यूसुफ की पोती थी कि जिसका नाम था रहमा। नबी अल्लाह अय्यूब के दिन इस कदर सख्त हो गए कि ये जौजा, शहर वालों ने तो गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से बाहर निकाल दिया था ना, यहां ये बात भी वाजे हो जाए, बहुत सी मकामात पर बरादरान की कुतुब में ऐसी रिवायतें हैं कि वल अयाज़ु बिल्लाह नबी अल्लाह अय्यूब को ऐसी बीमारी या ऐसा फोड़ा निकल आया था कि कौम के लोग उनके करीब नहीं आना चाहते थे, नहीं, हमारे अइम्मा ने इन रिवायात से मना फरमाया है, क्यों, क्योंकि नबी अल्लाह इमाम मासूम कभी इस कैफियत में नहीं आ सकता कि लोग उनसे करीब ना आ सकें, वगरना लोग हिदायत से महरूम रह जाएंगे। ये नबी अल्लाह अय्यूब की तंगदस्ती थी, ये नबी अल्लाह अय्यूब का फक्र था, ये उनकी फाका कशी थी, उनका इम्तिहान था कि जिसकी वजह से कौम ने उनको कौम से बाहर निकाल दिया था और एक गार में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। उनकी जौजा रहमा, वो जो बादशाह जादी, वो जो नबी जादी, नबी अल्लाह यूसुफ की के जो अपने वक्त के बादशाह थे मिस्र के, उनकी पोती थी, शहजादी थी, लेकिन आजमाइश यहां तक आ गई थी कि लोगों के घरों पर काम किया करती थी और बदले में जो गिजा मिलती उससे अपना और अपने शौहर का की भूख को मिटाया करती थी। ये इम्तिहान भी नबी अल्लाह अय्यूब दे रहे थे, लेकिन एक मौके पर इबलीस, ये रिवायत है छठे इमाम की, इबलीस खातून की सूरत में नबी अल्लाह अय्यूब की जौजा के पास आया। ये कौन सा मरहला है कि जब नबी अल्लाह अय्यूब की जौजा को कहीं कोई काम नहीं दे रहा, नबी अल्लाह अय्यूब की जौजा होने की वजह से लोगों ने अपने सारे रिश्ते ताल्लुक तोड़ दिए हैं, नबी अल्लाह अय्यूब की जौजा को ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं गिजा का बंदोबस्त कहां से करूं, इस हद तक मामलात आ गए। तो इबलीस मलऊन एक खातून की सूरत में नबी अल्लाह अय्यूब की जौजा के पास आया, और वो खातून नबी अल्लाह अय्यूब की जौजा रहमा से कहने लगी कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें आज के लिए आबो गिजा का बंदोबस्त कर दूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना। काम क्या है? खातून बन के आया था, तुम्हें मेरा एक काम करना है। बयाबान में आया था, कोई शहरी आबादी नहीं थी, आसपास कोई नहीं था देखने वाला। तुम्हें मेरा काम यह करना है कि तुम अपने सर से चंद बालों को काटो और वो मुझ खातून के हवाले कर दो, कि जिसके बदले मैं तुम्हें थोड़ा सा गंदुम दे दूंगी कि जिससे तुम अपना और अपने शौहर का पेट भर सकती हो। रहमान ने जब ये सुना तो नबी जादी है, शहजादी है, बहुत परेशान हो गई। लेकिन बिलाखिर नबी अल्लाह की खिदमत के लिए, नबी अल्लाह को भूख से निजात दिलाने के लिए इस इम्तिहान को कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। जब घर तशरीफ लाई, नबी अल्लाह अय्यूब ने सवाल किया कि रहमा आज का गंदुम कहां से हासिल किया, तो डरते डरते बताया, ए नबी अल्लाह अय्यूब, आपके माल में, आपके हक में कोताही हो गई है, आपकी मिल्कियत में कोताही हो गई। वो क्या है? फरम बताया कि ए नबी अल्लाह, आज मुझे शहर में किसी ने कोई काम नहीं दिया, मैं बगैर कुछ लिए खाली हाथ इस गार में आ रही थी कि अचानक रास्ते में खातून से मुलाकात हुई, उसने मुझे ये गंदुम दिया, लेकिन बदले में उसने मुझसे मेरे चंद बाल मांगे और मैंने न चाहते हुए उसे दे दिए। रिवायत कहती है नबी अल्लाह अय्यूब ने जब अपनी जौजा के ये हाल सुना तो तड़प कर रह गए। अय्यूब जैसा साबिर नबी के जिसका सब्र मशहूर है, उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि किसी अजनबी खातून के हाथ में अय्यूब की जौजा के सर के चंद बाल आ जाएं। अल्लाह अकबर। क्या इस बयान के बाद भी किसी मसाइब को बयान करने की जरूरत है? मैं कुर्बान हो जाऊं मेरे साबिर इमाम सैयद सज्जाद पर। अल्लाहु अकबर। करबला से कूफा, कूफा से शाम, मेरा गयूर इमाम नहीं मालूम किस तरह से अपनी माओ बहनों फूफियों को बेमकनों चादर बाजारों और दरबारों में फिराए जाते हुए देखता रहा, नहीं मालूम कैसे इमाम सब्र करते रहे। यही वजह है ना कि फिर 35 बरस जब तक जिंदा रहे अपने बाबा पर आंसू बहाते रहे। अल्लाहु अकबर। अजरकुम आला जहरा। गिरिए की सदाएं बुलंद हो रही हैं, हक है कि गिरिया किया जाए। यही वजह तो है वो इम्तिहान के जो नबी अल्लाह अय्यूब जैसा साबिर नबी नहीं दे सक रहा, मेरा चौथा इमाम उस इम्तिहान से नहीं मालूम कैसे गुजरा। यही तो वजह है ना कि हमेशा रोते जाते और 3 लफ्ज कहते जाते, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अरे शाम में आले नबी पर ऐसी मुसीबतें आई कि जैसी मुसीबत फिर कहीं नहीं आई। हाँ जी, जो आले नबी की गुर्बत पे चंद जुमले पढ़ना चाहता हूं। रिवायत आप लोगों ने सुन रखी है ना कि जब असरे आशूर शोहदा के लाशे पामाल करने की बारी आई, तो इमाम हुसैन के अस्हाब में से जो बहुत से कूफे के रहने वाले थे, उनके कबीले वालों में से चंद लोग फौज अश्किया में थे, आगे बढ़े, कहने लगे, ऐ पिसरे साद, तूने हमारे इन अजीजों को कत्ल कर दिया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हमारे कबीले के किसी फर्द की लाश की तौहीन हो ये हम गवारा नहीं करेंगे, तलवारें उठ जाएंगी। अलगरज ये, अलकिस्सा मुख्तसर ये, हर कबीला आगे बढ़ा, अपने रिश्तेदार के लाशें को उठाता गया, यहां तक के मौला आका अबुल फजल अब्बास के लाशे को भी पामाली से बचा लिया गया। शहजादी जैनब खैमे के दर से ये मंजर देख रही थी और सदा दे रही थी, अरे हर किसी का कोई चाहने वाला है क्या? रसूल और आले रसूल का कोई करामतदार नहीं है? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अज़हरा। ये गुर्बत यहीं पर खत्म ना हुई, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। गिरिए की सदाएं बुलंद हो रही हैं, खुदाए नाशुओं को कल्ब फातिमा जहरा के लिए ढारस का बाइस करार दे। अजीजों, गरीबी और गुर्बत और तन्हाई यहाँ खत्म नहीं हुई है। गुर्बत का आलम यह है, रिवायत और मकातिल के जुमले हैं कि जब करबला से शहजादियों को कैदी बनाकर रस्सियों में झकड़ कर शहरे कूफा में लाया गया और दरबारे कूफा में लईन के सामने पेश किया गया, तो वो जो कूफे के कबाइल थे ना, कि जिनके कुछ अफराद इमाम हुसैन के असहाब थे, कि जिनकी अजवाज और ख्वातीन कैदी बनाकर लाई गई थी, कूफे के वो कबीले वाले लईन अमीर के पास आ गए और कहने लगे, अमीर तूने हमारे कराबतदारों को कत्ल कर दिया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हमारे कबीले की ख्वातीन को बेमकना चादर फिराया जाए ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मख्तल और रिवायत के अजीब जुमले हैं कि कूफा के दरबार में हर कोई आता था और अपने कबीले की खातून के सर पे चादर डालता था। हाँ, अगर बगैर मकना चादर के कोई रह गया तो वो फकत रसूल की बेटियां थी, वो फकत अली और फातिमा की बेटियां थी। इसी गुर्बत के आलम में इन मस्तूरात को कूफा से शाम लाया गया। शाम के दरबार ने एक और गुर्बत का मंजर देखा, एक और अजीब मंजर देखा, और वो मंजर पढ़ूंगा और पे जहमत तमाम जिसे जितना गिरिया नसीब हो जाए, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। सैयद सज्जाद की गुर्बत को महसूस करना, रसूल और आले रसूल की गुर्बत को महसूस करना। शाम का दरबार है, जब लईन ने सैयद सज्जाद को देखा और पूछा ये कौन है, बताया गया ये अली इब्न हुसैन है, तो कहने लगा अली इब्न हुसैन तो करबला में कत्ल हो गए, इमाम ने बताया वो मेरे भैया अली इब्न हुसैन थे, मैं भी अली इब्न हुसैन हूँ, और मेरे बाबा तो ये तमन्ना किया करते थे कि अगर खुदा मुझे 1000 फर्जंद भी देता तो मैं हर किसी का नाम अली रखता। लईन ने जब ये सुना, अली का नाम सुना, तैश आ गया और एक मरतबा अल्लाह को हुक्म दिया कि हुसैन के इस बेटे को भी हुसैन के पास भेज दो, इसे क्यों जिंदा रखा गया। मख्तल और तारीख के अजीब जुमले हैं कि जब मुहाफिज़ा इमामात अली की बड़ी दुख्तर शहजादी ज़ैनब उलिया ने इस मंजर को देखा, तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद के आगे आकर अपने आप को खड़ा कर लिया और कहने लगी, जब तक मैं अली की बेटी ज़ैनब जिंदा हूं, कोई हुसैन के फर्जंद के करीब नहीं आ सकता। ज़ैनब मुहाफिज़ा इमामत बन गई। एक मरतबा तो लईन छटक गया, मगर फिर जल्लाद को हुक्म दिया, अरे पहले इसकी फूफी को कत्ल करो, फिर इसे कत्ल करना। हाँ अज़ीज़ो, आले रसूल की गुर्बत सुनना। अरे जब ये मंजर देखा तो अहले बैत की बावफा कनीज के, जिनका ताल्लुक हबशा से था, अफ्रीका से था, वो बावफा कनीज जनाबे फिजा आगे बढ़ी, अपने आप को शहजादी जैनब के आगे रख लिया और कहने लगी कि जब तक मैं कनीज फिजा जिंदा हूं, मेरी आकाजादी की तरफ कोई नजर उठा के नहीं दे सकता। लईन ने हुक्म दिया, अरे इनकी कनीज को भी कत्ल कर दो। आले रसूल की गुर्बत को महसूस करना, शहजादी फिजा की कत्ल का हुक्म का जारी होना था कि दरबार में मौजूद 70 के करीब से अफाम गुलामों ने अपनी तलवारों को निकाल लिया। ऐ बादशाह, ये अगरचे इस घराने की कनीज है, लेकिन हमारे इलाके की मलिका है, हमारी शहजादी है। हम अगरचे गुलाम हैं, सियाफाम हैं, लेकिन हमारी गैरत तकाजा नहीं करती, हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, हमारी नजरों के सामने हमारी मलिका को कोई कत्ल करे। अरे शहजादी जैनब ने मदीने का रुख किया। ऐ नाना,
شیافام غلام بھی اپنی گھر کی شہزادی کی طرفداری کر رہے ہیں، اگر کوئی بے آسرا ہے تو فقط آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی نواسیاں ہیں کہ جن کا کوئی حامی ہونا سن۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ آل نبی کے غربت کا، تجھے واسطہ سیدانیوں کی اسیری کا، ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ کو غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پر بیٹھے ہیں، جو مومنین مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، دل میں جو حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں، اہل بیت کی غربت کے صدقے میں ان تمام کی حاجات کو قبول فرما۔ بار الہ امام علی، امام بارگاہ علی رضا کے جتنے خادمین ہیں ان تمام کی زحمتوں کو منظور فرما، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا، فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد و آله الطاهرين ماتم حسين۔
محمد و آل محمد صلوات۔